जमुना तीरा बन जा यमुना, जमुना तीरा बन जा राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। जय गौर नटराज दयालिताय, गौर नटराज जय दयालिताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य श्लोक षट् श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन डिप्टी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की। उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवत सार की श्रृंखला में दसवें स्कंद के 89 अध्याय पर चर्चा है, जिसका शीर्षक है कृष्ण और अर्जुन के द्वारा ब्राह्मणों के पुत्र ब्राह्मण के पुत्रों की पुनः प्राप्ति। इसके पहले श्लोक को पढ़ेंगे, कृपया दोहराइए। श्री शुक उवाच सरस्वत्यास्तटे राजन् ऋषया सत्रमासत वितर्कः समभूतेषां त्रिष्वधीशेषु को महान्। श्रीशुक उवाच सरस्वत्यास्तटे राजन् ऋषय सत्रमासत वितर्कः समभूतेषां त्रिष्वधीशेषु को महान्। श्रीशुक उवाच सरस्वत्यास्तटे राजन् ऋषय सत्रमासत वितर्कः समभूतेषां त्रिष्वधीशेषु को महान्।
त्रिष्वधीशेषु को महान्। श्रीशुक उवाच सरस्वत्यास्तटे राजन् विषया सत्रमासत वितर्कः समभूतेषु को महान्।
श्री शुक उवाच शुकदेव गोस्वामी ने कहा सरस्वत्याः सरस्वती नदी के तटे किनारे राजन हे राजा परीक्षित ऋषयः ऋषिगण सत्रम वैदिक यज्ञ आसत कर रहे थे वितर्कः वाद विवाद संभूत उठ खड़ा हुआ तेषां उनमें से त्रिशु तीन अधिशेषु मुख्य स्वामियों में से कह कौन महान सबसे बड़ा। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, शुकदेव गोस्वामी ने कहा हे राजन, एक बार जब सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों का समूह वैदिक यज्ञ कर रहा था तो उनके बीच यह वाद विवाद उठ खड़ा हुआ कि तीन मुख्य देवों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो इस अध्याय को कहने से पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे, कृपया आप सब भी साथ में दोहराइए।
सर्वशास्त्राभिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता। परमानन्द पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधो मत्संगी मद्गुरौ मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते। असाधु साधु तदाई अतिनीच चतः कर हानमुंच कदाचिन्मां प्रेम्नारित्कंठयो स्फुरा।
हरे कृष्ण। तो ये 89वां अध्याय है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का, और इसके बाद अंतिम अध्याय श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का होगा, जहां भगवान की मधुरता का वर्णन है। तो इस अध्याय में प्रारंभ होगा भगवान की मधुरता का, कृष्ण की मधुरता का वर्णन अंत में, और फिर अगले अध्याय में वो आगे बढ़ाएंगे। तो इस अध्याय में दो प्रमुख बातों को स्थापित किया गया है। पहली कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु, इन तीनों में विष्णु श्रेष्ठ हैं। तो ये पहली बात इस अध्याय में स्थापित की गई है कि जब तीनों त्रिदेव कहते हैं तो उसमें विष्णु ब्रह्मा जी और शिव जी से भी श्रेष्ठ हैं। और दूसरी बात यहाँ पर स्थापित की गई है कि श्री कृष्ण विष्णु से भी श्रेष्ठ हैं। तो ये दोनों बातों को यहाँ पर स्थापित किया गया है। पहली बात स्थापित की गई है भृगु मुनि के उदाहरण से। तो इस अध्याय के पहले 20 श्लोकों में वर्णन आता है कि कैसे भृगु मुनि को भेजा जाता है तीनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है ढूंढने के लिए, और भृगु मुनि वापस आकर स्थापित करते हैं सभी ऋषि मुनियों के सामने कि ये भगवान विष्णु तीनों में श्रेष्ठ है। तो ये पहले 20 श्लोकों में है। फिर 21 से लेकर 34वें श्लोक तक वर्णन किया गया है कि कैसे अर्जुन के सामने या एक ब्राह्मण आकर पहले राजा के सामने प्रार्थना करते हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए, और फिर अर्जुन आगे चलकर वचन देते हैं कि मैं बचाऊंगा। फिर ये चलता है 34 श्लोक तक, और 35वें श्लोक से 44वें श्लोक तक वर्णन है कि कैसे अर्जुन बचा नहीं पाते उनके पुत्र को, और फिर अर्जुन अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद का वर्णन है 45 श्लोक से आगे करीब 59 श्लोक तक कि कैसे श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर महाविष्णु के वहां जाते हैं, और फिर कैसे महाविष्णु क्या बातचीत करते हैं। और अंतिम भाग है इस अध्याय का जहां वापस आते हैं श्री कृष्ण द्वारका में, और भगवान के महत्व या भगवान की प्रमुखता का वर्णन अंतिम श्लोकों में किया है, और फिर इसके बाद अगले अध्याय में पूरा भगवान की मधुरता का वर्णन है। तो ऐसे ये अध्याय है दो महत्वपूर्ण बातों को स्थापित करता हुआ। तो जैसे हम लोग श्लोक पढ़ रहे थे कि सरस्वती नदी के तट पर एक समय, ये बहुत पहले की बात है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं बहुत पहले, लॉन्ग लॉन्ग अगो, पता नहीं कितने समय पहले, तो सारे ऋषि मुनि सरस्वती नदी के तट पर हैं और वे सब यज्ञ कर रहे हैं। ये वो ऋषि हैं जो पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त नहीं हैं कृष्ण के, ये वो ऋषि हैं जिन्हें संशय है, और इसीलिए चर्चा प्रारंभ होती है कौन श्रेष्ठ है, ब्रह्मा श्रेष्ठ हैं, शिवजी श्रेष्ठ हैं या विष्णु श्रेष्ठ हैं। तो तीनों के बारे में लोग अपने अपने विचार प्रकट करते हैं, निर्णय नहीं हो पाया तो उन्होंने भृगु मुनि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं उनको कहा कि आप इसका निर्णय कीजिए। तो भृगु मुनि को चुना गया। अब भृगु मुनि इनका कार्य था कि इन तीनों में कौन श्रेष्ठ है इनको ढूंढना। तो अब वे सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ढूंढना चाहते हैं कि कौन श्रेष्ठ है। तो किस आधार पर ढूंढते हैं भृगु मुनि? भृगु मुनि ढूंढते हैं इस आधार पर कि इन तीनों में जैसे तीन गुण होते हैं प्रकृति के, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तो इन तीनों में सत्वगुण में कौन स्थित है, पूर्ण रूप से सत्वगुण में, तो वो श्रेष्ठ है। तो ये आधार था उनका ढूंढने का। तो भृगु मुनि चले गए, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। जैसे ही प्रवेश किया ब्रह्मा जी के सभा में, और प्रवेश कर उन्होंने प्रणाम नहीं किया ब्रह्मा जी को, कोई गुणगान नहीं किया ब्रह्मा जी का, ऐसे ही खड़े रहे। ब्रह्मा जी के मन में क्रोध आ गया। वैसे नियम यह है कि जब कोई पुत्र
पिता के पास जाए तो उसको प्रणाम करना चाहिए, या फिर कोई शिष्य गुरु के पास जाए तो प्रणाम करें और उनका गुणगान करें, ये नियम है। इसीलिए हम लोग जब श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं तो प्रणति कहते हैं, तो वो गुणगान है उनका। नमाउं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ये मंत्र हमें कहना चाहिए प्रणाम करते हुए, ऐसे नहीं कि बस आए प्रणाम किया बस तुरंत उठ गए। बहुत मैकेनिकली कह दिया नमाउं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठ, कभी कभी भक्त क्या करते हैं दूर से आते आते ही शुरू हो जाते हैं, नमाउं लेट हो जाता है तो वहीं से शुरू हो जाते हैं, नमाउं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय। तो ये मैकेनिकल नहीं, ये गुणगान है। प्रणति मतलब गुरु का गुणगान है। तो इसलिए प्रभुपाद इसको बहुत ध्यान रखते थे। कभी कभी जो प्रभुपाद के सेवक होते थे उनको कई बार आना जाना पड़ता था प्रभुपाद के कमरे में, तो स्वाभाविक है कि कई बार आने जाने में वो प्रणाम नहीं करते थे, या करते भी थे तो बस ऐसे गिरते थे तुरंत उड़ जाते थे। तो प्रभुपाद ने उनसे कहा कि ये क्या कुल्हाड़ी की तरह गिरते प्रणाम करते हो, कुल्हाड़ी मतलब ऐसे ऐसे मारी हटा देते ना, कुल्हाड़ी मारते हैं ढाड़ ऐसे, तो ऐसे नहीं, प्रणाम करके गुणगान होना चाहिए, नियम है। तो इसीलिए इन्होंने किया नहीं ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। लेकिन ब्रह्मा जी ने किसी तरह अपने क्रोध को वश में कर लिया, तो भृगुमुनि ने देखा कि इतना क्रोध आ गया। तो क्रोध ये रजोगुण का लक्षण है, सत्वगुण का लक्षण नहीं है। तो ब्रह्मा जी इसका अर्थ है कि ये सत्वगुण में नहीं है, क्योंकि इनको क्रोध आ गया बड़ी तेजी से। हाँ बुद्धि है उनमें, बड़े कहना चाहिए उनका शरीर ही बुद्धि से बना है, इसीलिए अपनी बुद्धि से उसको रोक सके, उस क्रोध को क्रोध नहीं किया। और फिर बच्चा है अपना, पुत्र है, तो इसीलिए क्रोध को उन्होंने वश में कर लिया। तो भृगु मुनि ने देखा और उन्होंने कहा कि ये तो ठीक नहीं है, तो रजोगुण में आ गए। तो फिर वो चले गए शिवजी के पास। अब दोनों भाई हैं शिवजी और भृगु मुनि, क्योंकि शिवजी भी प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी से और भृगु मुनि भी प्रकट हुए हैं। तो शिव जी बैठे थे और जैसे ही प्रवेश किया भृगु मुनि ने, शिव जी बड़े प्रसन्न हुए, भाग कर गए उनकी तरफ और उनको आलिंगन करने लगे थे भृगु मुनि को। भृगु मुनि गए रुक जाओ। अरे आप सोचिए कि कोई आपको कोई आए बड़े समय बाद, आप बड़े प्रसन्न होकर उसको आलिंगन करने जा रहे हैं और बड़े रुक जाओ। शिव जी ने कहा क्या हुआ, राख वाख लगाकर घूमते रहते हो, तुम्हारे को कौन आलिंगन करेगा ऐसा भृगु मुनि ने कह दिया कि तुम तो ठीक से पालन नहीं करते हो पथ का, तो दूर रहो, मेरा शरीर अशुद्ध हो जाएगा तुम्हें स्पर्श करके। तो जैसे ही शिवजी ने ये सुना तो शिवजी को बड़ा क्रोध आ गया, इतना क्रोध आया। ब्रह्मा जी ने तो कंट्रोल कर लिया था, शिवजी ने तो आप जानते हैं शिवजी को तो कंट्रोल नहीं होता, उन्होंने त्रिशूल लिया और बोला अच्छा ऐसा है, मारने जा रहे थे भृगु को, अभी यही खत्म कर देता हूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो उन्होंने लेकर सीधा बस खत्म कर रहे। तो पार्वती ने देखा ये क्या हो रहा है, ये भृगु मुनि को बस इसलिए मारो, उन्होंने जाके चरण पकड़ लिया, अरे अरे मत करिए ऐसा मत कीजिए, शिव जी से कहा। तो शिव जी ने ठीक है, शिव जी रुक गए। तो भृगु मुनि ने देखा कि अरे ठीक है, वो तो कम से कम थोड़ा कंट्रोल कर लिए थे, ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा ये भी श्रेष्ठ नहीं हो सकते। अब फिर भृगु मुनि गए श्वेत द्वीप भगवान के पास, विष्णु के पास, जो लक्ष्मी देवी के साथ वहां पर थे। तो ये वर्णन है कि वो लक्ष्मी देवी के साथ में थे, तो वहां पर विश्राम कर रहे थे। अब भृगु मुनि ने दो जगह अपराध किए थे, हम लोग देखते हैं। पहला अपराध भृगु मुनि ने किया था मन से, जय श्री गौर नटराज दयाल, उन्होंने बस आदर नहीं दिया, मन से कर दिया अपराध। दूसरा उन्होंने अपराध किया वाचा से, गलत शब्द बोलकर, ऐसे हो ये सब इत्यादि, तो अपमान किया वाचा से। और अब तीसरा अपराध करने जा रहे हैं शरीर से, मनसा कर्मणा वाचा। तो ये अपराधों की श्रेणी में कहना चाहिए कि गंभीरता की ओर जा रहे हैं। पहला अपराध मन में कर लिया, इतना गंभीर नहीं है, फिर वाचा से किया बहुत गंभीर है, और फिर अब शरीर से करेंगे जो बहुत ही ज्यादा गंभीर माना जाता है तो अपराधों में, खास करके भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति। तो उन्होंने अब वो अपराध करने जा रहे हैं तो क्या, वो तो उनके सेवा है, क्या करें। तो अब गए तो उस समय वर्णन है कि श्री विष्णु जी और लक्ष्मी देवी उस समय अकेले में थे, अर्थात कहना चाहिए कि पति पत्नी आपस में प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे। बहुत सुंदर शैया थी और उस पर वो विराजमान थे, और ऐसे समय में जब लक्ष्मी देवी उनके साथ हो, मतलब कहना चाहिए कि जब पति और पत्नी अकेले होते हैं तो उसमें तो किसी को प्रवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ भृगु मुनि ने केवल प्रवेश ही नहीं किया, देखा उन्होंने प्रवेश कर कर कि विष्णु और लक्ष्मी ये आपस में प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, और ऐसे समय में जाकर उन्होंने सीधा लात मार दी भगवान के वक्षस्थल पर विष्णु के। अब बड़े आश्चर्य की बात है, तो क्या होना चाहिए। ब्रह्मा जी का तो मन से किया था, ब्रह्मा जी क्रोध हो गए थे, शिव जी को वाचा से किया, शिव जी ने तो त्रिशूल लेकर मारना शुरू कर दिया, अब ये तो पांव लात मार दी जोर से, वो तो जलाकर राख कर देना चाहिए था विष्णु को, इनको, ये भृगु को, ये ऐसे कैसे किया। लेकिन तुरंत दोनों उठे, लक्ष्मी देवी भी और भगवान विष्णु भी, और तुरंत उठकर उन्होंने चरणों को पकड़ा भृगु मुनि के। कोई क्रोध नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई हिंसा नहीं, केवल चरणों को पकड़ लिया और क्षमा मांगी। श्री विष्णु जी ने क्षमा मांगी भृगु मुनि से कि गलती हो गई, आप आए और हम आपको देख नहीं पाए, आपका आदर नहीं कर पाए, क्षमा कर दीजिए, और आपके ये जो चरण है ये तो बड़े कोमल हैं, और मेरा वक्षस्थल, विष्णु कहते हैं, तो वज्र की तरह है, तो स्वाभाविक है आपको बहुत चोट लगी होगी, रुकिए थोड़ा सा। फिर भगवान उनके चरण लेकर उनकी मसाज करने लगे, उनको अच्छी तरह से सहलाने लगे। तो भृगु मुनि इसको देख रहे हैं, लक्ष्मी देवी ने भी कुछ नहीं कहा। प्रभुपाद लिखते हैं कि लक्ष्मी देवी ने इस कारण से ब्राह्मणों को श्राप दिया था आगे चलकर, भागवत में नहीं लिखा, प्रभुपाद जी ऐसा वर्णन करते हैं कि लक्ष्मी ने, ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इसी कारण से श्राप दे दिया, और इसीलिए जो ब्राह्मण है वो हमेशा गरीब रहते हैं। ये वर्णन लक्ष्मी का श्राप होगा किसी को तो कैसे ऐश्वर्य हो सकता है, तो लोग हमेशा गरीब रहते हैं, तो इसीलिए लक्ष्मी देवी ने श्राप दे दिया। वैसे इस प्रसंग में और एक कथा जुड़ती है जो विष्णु पुराण के पद्मावती आख्यान में आती है, जहां इसी को, इसी प्रसंग को दिया गया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा भेद है, और उसमें भेद ये है कि लक्ष्मी देवी कुपित होकर वहां से चली जाती हैं, स्थान को छोड़ देती हैं भगवान के संग को, और फिर यहाँ पृथ्वी पर आकर तपस्या करने लगती है, कोल्हापुर नाम के स्थान पर वो तपस्या करती है। तो ये पद्मावती आख्यान में विष्णु पुराण के आता है। तो यहाँ भागवत में वर्णन है कि लक्ष्मी देवी भी क्रोधित क्यों नहीं हुई, क्योंकि लक्ष्मी देवी ने देखा कि उनके स्वामी क्रोधित नहीं हुए, तो वो कैसे क्रोधित हो सकती है। तो उस समय उन्होंने चरणों को बड़े अच्छे से मसाज किया, और फिर क्रोध की तो बात दूर है, विष्णु भृगु मुनि को कहते हैं बहुत धन्यवाद कि आपने आज यहां पर मेरी छाती पर, मेरे वक्षस्थल पर आपने अपने चरणों से वार किया है, अब ये जो वक्षस्थल है ये अब शुद्ध हो गया। विष्णु कह रहे हैं शुद्ध हो गया, जिनमें अशुद्धता है ही नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके ये मारने से भक्तों के चरण लगते हैं तो फिर हो ही जाता है, तो उन्होंने कहा शुद्ध हो गया, और अब लक्ष्मी यहां शाश्वत निवास करेंगी। प्रभुपाद समझाते हैं लक्ष्मी का नाम है चंचला, चंचला मतलब वो एक स्थान पर कभी नहीं रहती। आज कोई अमीर है, इसी जन्म में प्रायः कभी कभी धन चला जाता है, और अगर इस जन्म में नहीं भी गया तो हम लोग देखते हैं एक जनरेशन दो जनरेशन बाद तो धन चला ही जाता है, कोई बहुत अमीर आदमी होंगे, उसकी एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन, हालांकि उसने कमाया इतना होगा कि लोग कहते हैं कि इसकी तो सात पुश्तें खा सकती हैं या बहुत खा, लेकिन धीरे धीरे देखते हैं सारा धन चला जाता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव ही यही है, चंचला, वो एक स्थान पर नहीं रहती। लेकिन अब भृगु मुनि की कृपा से भगवान कह रहे अब ये यहीं रहेगी, कहीं जाएंगी नहीं लक्ष्मी। तो भगवान ऐसे भृगु मुनि को कहते। तो भृगु मुनि ने जब ये देखा कि ये जो चीज हुई, तो भृगु मुनि बहुत आश्चर्यचकित हो गए। और अब उनको कुछ बोलना था, तो क्या बोलें वे सब, क्योंकि उन्होंने देखा भृगु, क्या बोलें भृगु ने देखा कि कैसा आचरण किया है भगवान ने। तो इसीलिए उन्होंने कुछ बोल नहीं पाए। वो भृगु मुनि खड़े हैं, उन्होंने देखा भगवान का ये आचरण, भगवान ने कहा बैठिए यहाँ पर इत्यादि, बड़ा आदर किया और कहा कि आपने बहुत अच्छा किया। तो भृगु मुनि की आंखों में आंसू आ गए और स्तब्ध रह गए, कुछ बोल नहीं पाए, बस वैसे ही खड़े रहे। तो ये अब उनको निश्चय हो गया कि विष्णु श्रेष्ठ हैं। तो वो वापस आए भृगु मुनि, और फिर उन्होंने सारे जो वहां पर उपस्थित ऋषि मुनि थे उनको ये कहा, बतलाया। तो जितने भी ऋषि मुनि थे, प्रभुपाद लिखते हैं, या उनके लिए कहा गया सब ब्रह्मवादी नाम। ब्रह्मवादी नाम मतलब जो सही सार को शास्त्रों के नहीं समझ पाए थे। वहां तीन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, मुनि नाम, शांता नाम और साधु नाम। तो मुनि, शांत और साधु, तो ये प्रकार के लोग थे। तो मुनि किसे कहते हैं? मुनि उसे कहते हैं जो मनन कर रहे हैं या जो मुक्ति के पथ पर हैं, उसे मुनि कहते हैं। शांत किसको कहा गया है? शांत उसको कहा गया है जिसने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। और साधु, साधु उन्हें कहा गया है जो भगवान की सेवा में लगे हैं। तो इसलिए तीन शब्द यहां इस्तेमाल हुआ है, मुनि नाम, शांता नाम और साधु नाम। तो ये तीनों प्रकार के लोग वहां पर थे। तो ऐसे ये निर्णय निकला कि विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं। तो हमें ये समझना चाहिए, कभी कभी हम लोग भक्ति मार्ग में हैं और किसी कारणवश हमारे लिए भी मन में आता है कि कहीं हम किसी देवता की या किसी अन्यों की पूजा कर लें, शायद लाभ हो। कभी कभी कहा जाता है कि अगर आप नहीं करोगे तो जीवन में कष्ट आएगा, तो फिर हमें लगता है कि चलो कर लेते हैं, फिर से भक्ति कर लेंगे। लेकिन इन प्रसंगों से हमें विश्वास हो जाना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है। वो जो भक्ति कर रहे हैं उनको, जो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं उनको कोई आवश्यकता नहीं है किसी और का आश्रय लेने की। उनके लिए परम आश्रय श्री कृष्ण है। और अब इस बात को समझाया जाएगा। तो विष्णु की स्थापना कर दी कि विष्णु तीनों में श्रेष्ठ हैं, और अब इस बात को समझा रहे हैं कि श्री कृष्ण परम आश्रय हैं। तो परम आश्रय कैसे हैं श्री कृष्ण, उसको समझाने के लिए और एक लीला सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। श्रीमद् भागवत ये महापुराण कहा जाता है। साधारणतः पुराणों में पांच विषय होते हैं, पांच लक्षण, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणी च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंच लक्षणम्। तो पुराणों के पांच विषय, पांच लक्षण दिए गए, लेकिन भागवत इसके 10 विषय हैं, 10 लक्षण, इसीलिए महापुराण कहलाया जाता है। अत्र सर्ग विसर्गश्च सानं पोषणम् उत्थया ईशन कथा मन्वंतर मुक्ति निरोधाश्रयः। तो ये 10 विषय दिए गए, और उसका 10वां विषय है आश्रय। आप इधर आ जाओ, मुझको बड़ा घूमना पड़ रहा है आपको देखने के लिए। सो 10वां विषय है आश्रय, और आश्रय क्या है? भगवान श्री कृष्ण। तो सारे 9 विषय श्रीमद् भागवत के हमें 10वें विषय तक ले जाने के लिए है, या दूसरे शब्दों में ये जो 84 लाख योनियों में हमारा भ्रमण है, ये हमें कृष्ण तक ले जाने के लिए। ये जितना भी उद्यम इस जगत में हो रहा है, जितना भी कार्य इस जगत में हो रहा है, जितनी भी व्यवस्थाएं इस जगत में हैं, वो हमें कृष्ण तक ले जाने के लिए। ये प्रकृति के जो नियम हैं, वो हमें कृष्ण तक ले जाने के लिए है। और साथ ही साथ जो भी व्यवस्थाएं इस जगत में हैं, चाहे कष्ट ही क्यों ना हो, त्रिविध ताप भी हमें दिए जा रहे हैं, वो भी हमें कृष्ण तक ले जाने के लिए है। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज इस अध्याय के अब इस भाग में स्थापित हो रही है, या कहना चाहिए कि भागवत का जो अंतिम विषय है, 10वां विषय आश्रय, उसको यहां पर स्थापित किया जा रहा है इस लीला के द्वारा। तो अब कौन सी लीला सुखदेव गोस्वामी कहते हैं? अब वो कहते हैं कि एक बार द्वारका में जब श्री कृष्ण रह रहे थे, तो ऐसा हुआ कि वहां पर एक ब्राह्मण रहता था उस नगरी में, द्वारका में, और ब्राह्मण के पहली संतान होने वाली थी। स्वाभाविक है, बहुत खुश था ब्राह्मण और संतान होने वाली है। तो जैसे ही संतान का जन्म हुआ, बच्चा रोया और फिर उसके बाद तुरंत गायब हो गया, मृत्यु हो गई उसकी। तो ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता था। जो पूर्ववर्ती राजा रहे हैं, उनका कार्य केवल इतना नहीं था कि वो प्रजा की रक्षा करते रहें, कि कोई आक्रमण ना कर दे बाहर से। उनके कार्यों में एक कार्य था प्रजा में किसी को कष्ट ना हो, दूसरा कार्य था बहुत ज्यादा ठंडी और बहुत ज्यादा गर्मी ना हो। हाँ, ये राजा का कार्य था। अब आप सोच सकते, ये कैसे राजा कैसे कर सकता है, वो तो देवताओं के हाथ में है। राजा को नियम कड़ाई से पालन करने होते थे, जिससे देवता सही समय पर सही चीजों को प्रदान करते थे। वर्षा सही समय पर आती थी, सूर्य की किरणें उतनी होती थी जितनी आवश्यक है। तो ये राजा का कर्तव्य था। अर्थात अगर राज्य में किसी को कष्ट हो रहा है तो राजा सही नहीं है, यही निर्णय निकाला जाता था, छोटी सी बात भी हो। तो कितना महत्वपूर्ण कार्य है राजा बनना। राजा बनने का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी के वोट लेकर बस राजा बन जाते हैं, या फिर किसी को हरा कर हम राजा बन जाते हैं। नहीं, ये बड़ी जिम्मेदारी का कार्य है। और क्या जिम्मेदारी है? सारी प्रजा को सुखी रखना, सारी प्रजा में देखना किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो क्या करें, वो लोग कष्ट ना हो, सुखी रहें, सुविधाएं हों, किस लिए? भगवान की भक्ति कर सकें। तो इसलिए नहीं राजा प्रदान करते थे सब कुछ कि वो लोग मौज मजा करें, आराम करें, ऐश करें। नहीं, वो एक देखते थे कि कोई दुविधा ना हो, उनको कोई कष्ट ना हो, ताकि सब लोग आराम से भगवान की भक्ति कर सकें। ये राजा का प्रमुख कर्तव्य था। आज राजा तो बनते हैं, लेकिन उनमें वो कर्तव्य की भावना नहीं है। क्या कर्तव्य की भावना? कि सारे जितनी भी प्रजा है वो सुखी रहे, ये कार्य की नहीं है। आजकल राजाओं का क्या है कि जब हम राजा बने तो हम कितने सुखी हैं वो जरूरी है। हम लोग जब थोड़ा बहुत सुनते थे बाहर के विषय में बहुत ज्यादा, तब ये कहा जाता था कि अगर कोई व्यक्ति एक महीने के लिए मंत्री बन जाए तो उसकी तो कई पुश्तें सुखी हो जाएंगी, ऐसे कहा जाता था। तो क्यों? ऐसे हुआ भी है, कोई एक प्रधानमंत्री बने कुछ महीनों के लिए और पता चला कि जिस स्थान से थे वो पूरा स्थान खरीद लिया उन्होंने, पूरा डिस्ट्रिक्ट उन्होंने खरीद लिया। तो ये ऐसे ये हुआ कर राजा। तो राजा का अर्थ ये नहीं है कि जो केवल अपनी सुविधाएं, अपने आनंद और अपने धन के लिए कार्य करे। अभी तो राजा बनते ही इसीलिए हैं, बनने से पहले भावना ये होती है। लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं वो लोग एक कुछ एमपी बनने के लिए या कुछ बनने के लिए। क्यों? क्योंकि पता है बन गए बस हफ्ते भर की बात है, सब रिकवर हो जाएगा, और फिर तो उसके बाद कमाई ही कमाई है। और ये सब जानते हैं, एमपी बनने से पहले आपकी बैलेंस शीट दिखाइए, क्या कितना टैक्स भर रहे हैं? 500 रुपए टैक्स भर रहे हैं, है ही नहीं कुछ। एमपी बनकर जब निकलते हैं 5 साल के बाद, तो करोड़ों रुपया उनका टैक्स 500 ही भरते हैं, वो अलग बात है, लेकिन संपत्ति बड़ी हो जाती है उनकी। तो राजा वो नहीं है, राजा वो है जो सारी चीजों को रखे। तो यहां एक ब्राह्मण के लड़के की मृत्यु हो गई, बच्चे की, नवजात शिशु की, वो ब्राह्मण आया उग्रसेन के द्वार पर। उग्रसेन राज्य कर रहे हैं, राजा उग्रसेन है, कृष्ण ने तो स्वीकार नहीं किया था राज्य बनना। उग्रसेन के द्वार पर और बड़ा बुरा भला कहने लगा यदुवंशियों को, और उनको सुनना पड़ा। अब सोचिए कि उनके द्वार पर आकर ये कह रहे हैं कि ये लोग नियम का पालन नहीं करते हैं, ये लोभी हैं, द्वेषी हैं, पापी हैं, दुराचारी हैं, और उनको चुपचाप सुनना है। कौन सुन रहे हैं? सब है, कृष्ण भी है, बलराम जी भी हैं, सब हैं, प्रद्युम्न अनिरुद्ध सब हैं, चुपचाप सुन रहे हैं। क्यों? राजा की गलती है। क्या गलती है? कैसे मर गया बच्चा? कुछ ना कुछ गलती होगी। अगर कुछ भी हो रहा है तो राजा की गलती है। रामचंद्र जी के समय भी ऐसा हुआ था, ढूंढो कहां गलती है, कुछ हो गया था तो रामचंद्र जी ने ढूंढा, एक शब्द उल्टा लटक कर तपस्या कर रहा। तो ये नियम थे। तो राजा की गलती है, अब सब चुप बैठे। तो उसने बहुत कुछ कहा, फिर बेचारा चला गया। फिर उस दूसरी संतान हो रही है, वो भी मर गए। जन्म लेता है बालक, जरा सा रोता है, गायब। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, नौ संतानें चली गई। और हर बार आकर उग्रसेन को दिल खोलकर प्रेम करता था, या जो भी कहना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। तो जब अब की बार वो आया, नौ संतानें चली गई, अब की बार वो आया तो अर्जुन वहां पर थे। तो अर्जुन ने सुना, अरे ये क्या कह रहे हैं? पहली बार ऐसा अर्जुन को अनुभव हुआ कि द्वारका में उग्रसेन के द्वार पर आकर कोई उनकी निंदा कर रहा है। ये लोभी राजा है, पापी राजा है, द्वेषी राजा है, आसक्त राजा है, नियम का पालन नहीं करता। अर्जुन ने, ये क्या हो गया? अर्जुन ने कभी सुना नहीं था ये सब। तो अर्जुन गए तुरंत, अरे ये क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा, मेरे पुत्र की मृत्यु हो रही है, ये कुछ कर नहीं रहे। तो अर्जुन ने सोचा, यहां दो वर्णन है, एक स्थान पर वर्णन है अर्जुन को थोड़ा अहंकार हो गया, लेकिन प्रभुपाद समझाते हैं अर्जुन को अहंकार नहीं था। अर्जुन ने सोचा कि अपराध कर रहा है, ऐसे भगवान के प्रति कह रहा है, तो मेरा कर्तव्य है कि इसको थोड़ा शांत करना। तो अर्जुन ने उससे कहा कि अरे तुम चिंता नहीं करो, अब की जो तुम्हारी संतान होगी उसकी मैं रक्षा करूंगा। अरे यहां पर इतने क्षत्रिय हैं, क्या सब क्षत्रिय, कोई झूठा भी क्षत्रिय नहीं है यहां जो केवल जाकर धनुष बाण लेकर खड़ा हो सके आपके घर के बाहर? आप चिंता नहीं करो, मैं करूंगा। तो उस ब्राह्मण ने बोला, ये संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, ये लोग तो कोई बचा नहीं पाए, आप क्या बचाओगे? तो अर्जुन सोचे अब क्या करे। कृष्ण खड़े थे, सुन रहे थे क्या कहता है अर्जुन। तो अर्जुन को अब दोनों करना था, ये ब्राह्मण को भी सांत्वना देनी थी और कृष्ण को भी समझाना था कि भाई मैं आपका विरोधी नहीं हूं। अर्जुन ने कहा, मैं संकर्षण नहीं हूं, मैं प्रद्युम्न नहीं हूं, मैं अनिरुद्ध नहीं हूं, मैं कृष्ण भी नहीं हूं, ना ही मैं कृष्ण का पुत्र हूं, मैं अर्जुन हूं। ऐसा लग रहा था कि वो अहंकार से बोल रहा है, मैं अर्जुन हूं, मैंने पशुपतास्त्र प्राप्त किया है शिव जी से, तो कोई भी होने दो, जो भी होगा मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा, मैं देखता हूं कोई कैसे ले जाता तुम्हारे पुत्र को। तो एक तरफ ये लगता है कि अर्जुन बड़ा अहंकारी है, लेकिन प्रभुपाद समझाते कि नहीं, अहंकारी नहीं था अर्जुन, ने जानबूझकर ब्राह्मण को, अर्जुन ने देखा कि ब्राह्मण इन पर विश्वास खो चुका है, नौ बार हो चुका था, एक बार होता तो थोड़ा विश्वास रहता, तो अर्जुन ने देखा विश्वास खो चुका है, अब मैं इनका गुणगान करूंगा तो फिर ये मेरे ऊपर भी विश्वास नहीं करेगा, तो इसीलिए उनको कहा ये सब नहीं हूं मैं अर्जुन हूं, और शिव जी का नाम लिया। क्यों? कृष्ण पर से तो विश्वास उठ गया है इसका, अब मैं बोलूंगा कि मैं कृष्ण का भक्त हूं तो बोलेगा तुम भी इधर ही बैठे रहो, कोई विश्वास नहीं तुम्हारे ऊपर, इसलिए कहा शिव जी से पशुपतास्त्र प्राप्त किया। अच्छा ठीक है। तो ब्राह्मण चले गए। एक वर्ष के बाद जब संतान होने का समय आया, प्रभुपाद लिखते हैं कि प्राय लगता है कि एक वर्ष तक वो वहीं थे द्वारका में, इंतजार कर रहे थे कि वचन दिया है, या फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि या तो वहीं थे या चले गए होंगे, फिर सुना कि अब समय हो गया है संतान का तो फिर से आ गए द्वारका में। तो खैर जो भी हो, तो अर्जुन को उन्होंने जो वर्णन है कि अब जब संतान होने लगी तब पत्नी को पता चला कि अब संतान होगी फिर से मर जाएगी, जाओ जाओ जल्दी अर्जुन को बुला कर लाओ। तो अर्जुन को बुला कर लाया गया, अर्जुन आए तो अर्जुन ने कहा आप चिंता नहीं करो, घर के बाहर उन्होंने पूरी तरफ अपने बाणों से एक किला बना दिया, कोई प्रवेश ही नहीं कर सके उसके घर के। और बाण मतलब साधारण बाण नहीं, आज की भाषा में कहना कि मिसाइल्स लगे हुए थे, कि कोई आएगा तो खत्म, अपने आप ही मिसाइल्स लगा दिए अर्जुन ने सारे वहां पर कि कोई नहीं आ सकेगा। और अर्जुन खुद खड़े हैं, ऐसा नहीं कि करके चले गए कि भाई कुछ हो तो बता देना मुझे, खड़े हैं उधर ही कि देखता हूं कौन आता है। और फिर संतान हुई, बच्चा रोया, रोने की आवाज सुनाई दी और उसके बाद फिर गायब। अर्जुन खड़े हुए हैं सारी व्यवस्था करके, बच्चा गायब। अब अर्जुन को पता चला वो ब्राह्मण आया रोते हुए। अच्छा ऐसा वर्णन है कि उस समय कृष्ण भी आ गए थे कि भाई देखे अर्जुन कैसे बचाता है। तो कृष्ण खड़े हैं, अर्जुन खड़े हैं। अब अर्जुन गांडीवधारी अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, देवताओं को परास्त करने वाले अर्जुन, वो ब्राह्मण ने आके बोला धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। बोले धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, और मैंने भी किस पर विश्वास कर लिया? अरे जो संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये लोग नहीं बचा पाए, मैंने भी किसके ऊपर, ये अर्जुन के ऊपर विश्वास कर लिया। ये गांडीव धारण करने का लायक ही नहीं है ये व्यक्ति। अर्जुन बेचारे सुनना पड़ रहा है क्या करे, हाँ गलती हो गई, नहीं तो अर्जुन तो ऐसे किसी ने कह दिया कि आप जानते हैं ना कि अर्जुन को कहा गांडीव हटा दो, किसने कहा? युधिष्ठिर ने, उन्हें तलवार निकाल ली, अभी मार देता है उसको, कहा कैसे? लेकिन यहाँ ब्राह्मण ने कहा चुपचाप सुन रहे, हाँ गलती है। देखा ये इतना बड़ी बड़ी बातें की, इसने कोई लाभ नहीं, इसके इसके ऊपर विश्वास करके मैंने गलती कर ली। तो अर्जुन ने कहा अरे चिंता मत करो, अभी लेकर आता। अर्जुन ने सीधे अपनी योग शक्ति का प्रभाव दिखाया, तो अर्जुन ने योग शक्ति से वो सीधे यमलोक चले गए। कहाँ? यमलोक में ही गया होगा बच्चा, तो वहां ढूंढे, तो वहां चले गए अपनी योग शक्ति से। अर्जुन जा सकते थे, यमलोक में मिला नहीं, तो उन्हें ठीक है हो सकता है इंद्र ले गया हो, ये तो पहले ही चोर बदनाम आदमी है। तो वो फिर वो इंद्र के पास गए, इंद्र के पास भी नहीं, फिर वो वरुण के पास गए, वो नहीं, चंद्र के पास गए, सोम के पास, अग्नि के पास, सब सबकी नगरी में घूमा है अर्जुन, बच्चा है ही नहीं कहीं। अब तो घूम के आके अर्जुन को पता चला अब तो कुछ नहीं हो सकता। और अब कृष्ण देख रहे हैं, हाँ भाई अब क्या करोगे, हो गया सब जगह घूमा है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। तो अब बताओ क्या करोगे। तो ब्रह्मांड, और वर्णन है कि वो सत्य लोग भी जाकर आया अर्जुन, प्रभुपाद कहते हैं कि वो ब्रह्मा जी के लोक में भी जाकर आ गया। तो ब्रह्मा जी के लोक में भी जाकर कहीं नहीं मिले, अब अर्जुन की इतनी शक्ति थी कि वो कर सकता था। तो अब तो शांत अर्जुन एकदम, क्योंकि जब बच्चा चला भी गया था तब भी अर्जुन को ऐसा नहीं हुआ था दुख, उसने कहा नहीं नहीं अभी तो मैं ले आऊंगा, किसके पास है यमराज, इसको तो ऐसे ही हरा के ले आऊंगा, उसको इंद्र पिता है वो तो वैसे ही दे देंगे, दान में दे देंगे, जो भी हुआ नहीं। तो अब अर्जुन ने कहा कि मेरे लिए अब तो मैंने वचन दिया, मैं वचन पूरा नहीं कर पाया अपना, तो उन्होंने कहा अग्नि में प्रवेश कर लेता हूं। तो अग्नि लगाई, भगवान देख रहे हैं ठीक है जहां तक जा सकते हो जाओ बाद में देखेंगे। अर्जुन ने कहा अब तो कुछ नहीं, अग्नि में प्रवेश कर जाना है। जब अग्नि में प्रवेश करने लगे तब भगवान ने रोका कृष्ण ने कि नहीं नहीं अग्नि में प्रवेश मत करो। क्यों अग्नि में प्रवेश नहीं करो? भगवान सोच रहे थे तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, नाम मेरा खराब होगा कि मेरा मित्र ये कुछ कर नहीं पाया, तो इसीलिए आ जाओ अभी लेकर आएंगे, चिंता नहीं करो, तुम जाके घूमाए अब हम लोग चलते हैं। तो फिर अर्जुन को उन्होंने बिठाया अपने रथ पर, रथ भगाया, तो अब भगवान का रथ चला। अब उनको तो पता था कहाँ जाना है, कहाँ पर है, तो भगवान का रथ गया। और वर्णन है भागवत में कि इस ब्रह्मांड को भेदते हुए, सारे लोकों से ऊपर ब्रह्मांड के आवरणों को भेदा, आठ आवरण होते हैं ब्रह्मांड के, उन आवरणों को भेद कर तो बड़े अहम अंधकार के स्थान में गए। पहले तो अंधकार ब्रह्म आवरण जो भेद रहे थे, तो ऐसा वर्णन है या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते केवल लीला मात्र के लिए कि जो घोड़े थे उनके रथ में चार घोड़े, उनको कुछ दिख नहीं रहा, वो भ्रमित हो गए कहां जाना, इतना अंधकार था। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला, कोई बात नहीं हमें कोई टेंशन ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाला तो एकदम प्रकाश हो गया। तो सुदर्शन आगे आगे चल रहा है, अब घोड़ों को दिख रहा है, बोले हाँ अब जहां जाना चल रहा है। तो सुदर्शन आगे आगे और ये रथ पीछे पीछे। तो फिर सुदर्शन इस जगत को, इस ब्रह्मांड को, इस भौतिक जगत को पार करके फिर पहुंचे वो लोग ब्रह्म ज्योति में, जहां देखा कि प्रकाश ही प्रकाश है, अर्जुन ने देखा। और फिर अंततः वो स्थान में पहुंचे जहां महाकाल क्षेत्र कहा गया उस स्थान को, और आचार्यों ने समझाया कि महाविष्णु के वहां उन्होंने दर्शन किए। तो वहां देखा अनंत शेष, अनंत को देखा, इतना सुंदर रूप भगवान का, और फिर महाविष्णु वहां पर थे। तो अर्जुन ने उनके दर्शन किए। अर्जुन तो ऐश्वर्य से भरा हुआ है, अरे वो तो उसकी क्षमता देवताओं तक की थी, घुमाया था सब जगह, भगवान तो उसको यहां तक ले आए, अब वो देख रहे हैं। और जब श्री कृष्ण पहुंचे वहां और श्री कृष्ण ने प्रणाम किया, अब अर्जुन देख रहे हैं भगवान है, तो श्री कृष्ण ने महाविष्णु को प्रणाम किया पूर्ण दंडवत, और महाविष्णु ने पूर्ण दंडवत इनको प्रणाम किया। अर्जुन देख रहे हो क्या रहे, भगवान कौन है, इसमें से है कौन, किसको प्रणाम कर रहा है। तो प्रणाम किया और फिर दोनों साथ में खड़े हैं, अर्जुन देख रहे हैं। और फिर उस समय महाविष्णु ने कहा श्री कृष्ण को कि अर्जुन से, श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि मैं आप दोनों के दर्शन करना चाहता था, आप दोनों अब नीचे प्रकट हुए हैं लीला करने के लिए, तो मैं आप दोनों के दर्शन करना चाहता था, इसलिए मैं बच्चों को ले आया था यहाँ पर, और अब आप लोग आप बच्चों को ले जाइए, और हाँ धर्म के नियमों का पालन करवाते रहने के लिए लोगों से आप वहीं रहिएगा नर नारायण के रूप में, मतलब अब आपका काम तो समाप्त तो हो गया है, लेकिन फिर भी वहीं रहिएगा नर नारायण के रूप में, जाइएगा नहीं। तो महाविष्णु ने ऐसे कहा, और अर्जुन ये सब देख रहे हैं, महाविष्णु ये कृष्ण को देखना चाहते थे। तब उनको समझ में आया कि भगवान के जो भक्त हैं या भगवान कृष्ण, उनकी क्या स्थिति है। मैं तो उनको भगवान मान रहा था, लेकिन यहां पता चला कि भगवान नहीं, वो परम भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड शब्द इस्तेमाल किया तो प्रभुपाद ने कई जगहों पर। तो हमने जब पहली बार सुना तो हम सोचे थे गॉड हेड क्या होता है ना, सुप्रीम पर्सनालिटी समझ में आता है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आया, काफी समय तक समझ नहीं आया था कि शब्द है क्या। फिर एक प्रवचन में हमने सुना प्रभुपाद समझाते हैं कि गॉड हेड शब्द क्यों इस्तेमाल, तो वो बता रहे थे कहीं पर थे, तो बोले ये जैसे यहाँ पर कंपनी का हेडक्वार्टर्स होता है, तो उसको बोलते हैं ना आप लोग हेडक्वार्टर्स हेड, इसीलिए हमने कहा गॉड हेड, जो सारे गॉडों में हेड है इसीलिए गॉड हेड कहा। फर्स्ट क्लास एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद, हेडक्वार्टर्स है वहां पर। तो अब समझ में आ गया अर्जुन को कि ये तो बड़े श्रेष्ठ हैं। तो फिर ये होने के बाद बच्चों को दे दिया सारे बच्चे, और वही रूप में थे बच्चे, मतलब अब बच्चों का तो आप सोचिए कि पहला जो जन्म लिया होगा और नौवें के लेने में 9 साल तो कम से कम निकल गए होंगे, तो पहले वाला तो 9 साल तक का हो जाना चाहिए था, लेकिन सारे उसी रूप में थे जिसमें लाए थे, मतलब सब एक दिन के जन्मे बालक, और उनको दे दिया 9 को। ऑफ कोर्स ब्राह्मण को क्या हुआ होगा वो हमें नहीं पता, वर्णन नहीं है कि जब 9 के 9 एक साथ ऐसे ही, उसने सोचा होगा कि भाई पहला वाला आएगा, दूसरा अब तो 9 साल का हो गया होगा, चलो उसको कुछ काम पे लगाऊंगा, लेकिन ये तो सारे के सारे एक साथ, तो खैर वो वर्णन नहीं है, ये हमारी एक्सप्लेनेशन है मगर तो ब्राह्मण के पुत्रों को वापस लाए और उन्होंने ब्राह्मण के पुत्रों को दिया। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गए, श्री कृष्ण ने ये कार्य किया। और फिर आगे अंतिम श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं भगवान की श्रेष्ठता का, कि किस तरह श्री कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं, जैसे पहले भी वर्णन हो चुका है, तो वर्णन करते हैं कि बड़े उनकी श्रेष्ठता, उनकी सुप्रीमेसी, भगवान परम है, इसको सुखदेव गोस्वामी स्थापित करते हैं। तो ये जो लीला भगवान के विषय में कही, ये कहने का तात्पर्य यही था कि श्री कृष्ण और कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, हेडक्वार्टर्स है वहां पर। तो ऐसे उन्होंने इसको स्थापित किया, ऐसे ही अध्याय है। तो जहां ब्राह्मण के पुत्रों को वापस लेकर आए, इनसे हम बहुत सारी शिक्षाओं को सीख सकते हैं। समय नहीं है, नहीं तो उन शिक्षाओं को जैसे अर्जुन के अहंकार से हम क्या सीख सकते हैं, भगवान के द्वारा पुत्रों को लाने से क्या सीख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें बहुत से उपदेश हमें मिलते हैं। तो आगे जो अध्याय की चर्चा करेंगे, अंतिम अध्याय दसवें स्कंद का, बड़ा मधुर अध्याय है क्योंकि उसमें भगवान की मधुरता का वर्णन है। उसमें और एक गीत आएगा। आप सबको याद है कि दसवें स्कंद में हम कई गीतों को गा चुके हैं। कौन कौन से गीत हैं? वेणु गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत, प्रणय गीत, तो ऐसे गीत हो चुके हैं। तो अब आएगा आगे अध्याय में महिषी गीत। जय श्री श्री गौ नटराज दयाल निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की। तो अभी तक जितने गीत थे वो प्रायः गोपियों से संबंधित थे अधिकतर या सभी। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि इस अध्याय को स्कंद का अंत करते करते थोड़ा रानियों के ऊपर भी कृपा कर दें, तो अब महिषी गीत आएगा। मतलब जो कृष्ण की रानियां हैं, महिषियां द्वारका में, उनके द्वारा गाया गया गीत। तो ये अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, वही वही, इसीलिए हमने कहा पद्मावती आख्यान बालाजी की स्टोरी है ना। विष्णु पुराण में जो पद्मावती आख्यान है वो पूरा बालाजी की ही स्टोरी है। उसका प्रारंभ भृगु मुनि से होता है और फिर आगे चलकर, क्योंकि लक्ष्मी देवी यहाँ आ जाती हैं तो भगवान विष्णु भी आते हैं पीछे पीछे ढूंढने के लिए, क्योंकि लक्ष्मी देवी छोड़ देती हैं तो धन नहीं रह जाता, गरीब हो जाते हैं, तो फिर आते हैं ढूंढने के लिए। और ढूंढने के लिए आते हैं तो वो तिरुपति में है, वहां पर ढूंढते हैं, वहां पहुंचते हैं। तो वराह देव का क्षेत्र है वो, तो वराह देव उनको रहने का स्थान देते हैं क्योंकि स्थान नहीं होता है रहने का, तो वराह देव देते हैं। लेकिन वराह देव कहते हैं कि मुझे मुझे क्या मिलेगा, रेंट क्या है? तो विष्णु कहते हैं कि आगे चलकर जब यहाँ पर मेरी पूजा होगी तो लोग आएंगे तो पहले आपके दर्शन करेंगे फिर मेरे दर्शन करेंगे, तो टैक्स आपको जाएगा फिर मेरे पास आएंगे। तो अभी नियम यही है तिरुपति बालाजी में जो जाते हैं कि वहां पर वराह देव का मंदिर है और उसके साथ में पुष्करणी है, लेक जिसमें स्नान करते हैं, तो लोग स्नान करते हैं वहां पुष्करणी में, वराह देव के दर्शन करते हैं, फिर बालाजी के दर्शन करने जाते हैं। तो वो आए थे ढूंढते हुए, फिर मिली नहीं तो फिर वहां रहने लगे और फिर उन्होंने पद्मावती से विवाह का उनका निश्चित हो गया। और जब ऑलमोस्ट निश्चित हो गया, विवाह हो गया, तब फिर लक्ष्मी देवी को पता चला कोल्हापुर में कि ये तो गड़बड़ हो गई, तो वो गई थी वहां पर फिर। तो ये कथा उन्हीं की है बालाजी से संबंधित। और कोई प्रश्न है? हाँ जी, अपराध दो अपराध देवताओं के प्रति थे और तीसरा भगवान के प्रति, तो इसका दंड क्यों नहीं मिला उनको? दंड पहला मिला कि सारे ब्राह्मण गरीब हो गए, हमने बताया लक्ष्मी देवी ने श्राप दे दिया कि जितने भी ब्राह्मण हैं वो गरीब हो गए। हाँ, आप ये कह सकते हो मारा क्यों नहीं, तो ब्राह्मणों को मारा नहीं जाता। प्रभुपाद लिखते हैं, ये जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर प्रभुपाद ने दिया है। प्रभुपाद कहते हैं कि हालांकि उन्होंने इतना किया लेकिन वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणों के ऐसे अपराध को क्षमा किया जाता है, ब्राह्मणों के अपराध को, क्योंकि जैसे वैदिक सभ्यता में 5 लोगों की रक्षा की जाती है, ब्राह्मण हैं, स्त्रियां हैं, गाय हैं, बच्चे हैं, और पांचवा क्या है? गाय तो कह दिया, वृद्ध हैं, तो इनकी रक्षा की जाती है। तो इसीलिए ब्राह्मणों से अगर कोई अपराध भी हो जाता है तो उनको दंड नहीं दिया जाता, बच्चों से कोई अपराध हो जाता है तो उनको दंड नहीं दिया जाता। तो इसलिए ब्राह्मणों का विशेष है, तो इसलिए कोई दंड नहीं दिया गया। दूसरा चीज, वे तो जानते थे कि ये परीक्षा करने आए थे इसलिए ऐसा हो गया, तो भगवान तो जानते थे इसलिए भी नहीं, क्योंकि वो अन्य ऋषियों के आदेश पर गए थे तो इसलिए नहीं। तो एक दृष्टि में दंड मिला भी, लेकिन उतना दंड नहीं मिला कि उनकी हत्या क्यों नहीं कर दी गई, क्योंकि ब्राह्मणों को मारा नहीं जाता, इसलिए नहीं किया। भगवान इस नियम को पालन करना चाहते हैं तो इसलिए नहीं किया, लेकिन हाँ दंड तो मिला। सारे ही ब्राह्मण आगे आने वाले गरीब हो गए, इतना बड़ा दंड, आज तक गरीब हैं सब। और कोई प्रश्न है? हाँ जी। बृहद भागवत अमृतम में आठ आवरण वर्णन किए हैं सनातन गोस्वामी ने, और हर एक आवरण का वर्णन भी किया है कि क्या होता है वहां पर, कितना ऐश्वर्य होता है। तो अंतिम आवरण प्रकृति का या कहा गया है, तो उसमें बहुत ऐश्वर्य होता है, तो वो जीव को आकृष्ट करने के लिए बहुत आवरण, मतलब क्या है कि वो ऐसे ऐसे ऐश्वर्यशाली स्थान है कि अगर जीव उससे बाहर जाना चाहता है तो उसको आकृष्ट कर सकते हैं, ऐसे हैं। तो अंतिम जो है वो बहुत है, मतलब ऐसा है कि जो पहला आवरण है वो आकृष्ट करता है, उसमें बड़ा ऐश्वर्य है, दूसरे में 10 गुना ज्यादा है, तीसरे में उससे 10 गुना ज्यादा है, ऐसे करते करते 8 तक पे आते हैं। तो 8 वर्णन, ज्यादातर 8 आवरणों का वर्णन किया गया है। यही 5 पृथ्वी व्याधि है, मन बुद्धि अहंकार और फिर प्रकृति, आखिरी प्रकृति। मन बुद्धि अहंकार नहीं है, 5 तत्वों का तो है, और 8वां प्रकृति का है, और 2 आई थिंक बुद्धि और अहंकार का है, मन का शायद नहीं, देखना पड़ेगा, ध्यान नहीं। और कोई प्रश्न है? कौन सी? हाँ, ऐसा वर्णन है कि अंडे की शेप में है ब्रह्मांड, तो अंडे की शेप में है, तो जो कवर उसको ढका हुआ है वो 8 आवरण है कड़े, उसके अंदर आधा जल से भरा हुआ है, अब जो आधा बचा उसमें 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स है, तो उसके परे 8 आवरण है। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ पूछ लो। जब वामन देव आए थे तो उन्होंने क्या किया था? हाँ, तो क्या आया था? नीचे क्या था? नीचे क्या है? जब ब्रह्मा जी नीचे गए क्या दिखा उनको? पानी। तो ये ऐसा है कि जो वहां विष्णु हैं वो कारण सागर में लेटे हुए हैं, और उनके रोमकूपों से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, तो ये सारे हैं उसी जल में, कारण सागर के जल, तो चारों तरफ जल ही है। और ऊपर जो होता है वो विरजा का जल कहा जाता है, जो आया था तो वो कारण सागर या विरजा का जल है, मतलब वो इससे शुद्ध होकर भगवान से वो गंगा बनी, तो चारों तरफ जल है। लेकिन जो ब्रह्मा जी देखते हैं वो ब्रह्मांड के बाहर का जल नहीं देखते, क्योंकि तो ब्रह्मांड के अंदर है, तो वो जल देखते हैं जिसको गर्भोदकशायी विष्णु ने अपने पसीने से बनाया हुआ है, उस जल को ब्रह्मा जी देखते हैं। यस। सभी कुछ भगवान की विभूतियां हैं, लेकिन सभी कुछ भगवान की शक्ति से प्रभावित हो जाती है। जब विभूतियां कहा जाता है तो भगवान नहीं है, भगवान का एक प्रतिनिधित्व करने वाला जो भी श्रेष्ठ चीज है वो भगवान का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे मन। तो क्योंकि माया से प्रभावित होता है, अब मन तो केवल विभूति है, जीव तो भगवान का अंश है, लेकिन फिर भी वो माया से प्रभावित हो जाता है। तो कैसे होता है? क्योंकि जीव की जो शक्ति, जीव जो शक्ति है वो तटस्था है, और उसका स्वभाव ही यही है कि या तो वो यहां रह सकता है या वहां रह सकता है। तो इसीलिए यहां जब होता है, यहां जो इस जगत में, तो माया के अधीन रहता है, उस जगत में जाता है तो आध्यात्मिकता के अधीन में रहता है। तो क्योंकि उसका स्वभाव है इसीलिए वो माया से प्रभावित होता है, लेकिन माया का स्वभाव है जीवों को प्रभावित करना, कृष्ण का स्वभाव है उनको वहां से निकालना। तो इसलिए मन के द्वारा हमारा मन प्रभावित निश्चित हो जाता है माया की शक्ति से या भगवान की शक्ति से, लेकिन भगवान निकाल भी लेते हैं। तो मन ये दोनों है। अगर आप भगवद गीता का छठा अध्याय पढ़ें तो उसमें मन को दोनों शत्रु और मित्र कहा गया है। तो वो प्रभावित होता है तब शत्रु है, लेकिन वही मन जब कृष्ण में लगता है तो हमारा सबसे बड़ा मित्र है। तो इसीलिए मन न तो शत्रु है न तो मित्र है, उसका उपयोग उसे शत्रु और मित्र बनाता है। तो इसीलिए हमें अपने मन को सही जगह में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।